मेरा नाम खावर सियालवी है और बुक का नाम है आज नहीं तो कभी नहीं। सुस्ती, काहली और तन आसानी, तारुफ, वजूहात और इलाज, मोहम्मद बशीर जुमा। जुमला हकूक बहक के मुसन्निफ महफूज हैं। गैर कानूनी तौर पर छुपवाना और फरोख्त करना हर लिहाज से जुर्म है। पहली इशा 2005, एहतमाम अब्दुलसलाम सलामी, कंपोजिंग व सफ़ा साजी अहमद ग्राफिक्स, कराची फहरिस्त। तारुफ, तज़िया, उजरात और वजूहात, तस्वीर ठीक कर लीजिए, एक सबक आमोज तमसील, सफ़ा नंबर 9। सुस्ती, काहली, एक दुश्मन, सफ़ा नंबर 11। तसाहुल क्या है, सफ़ा नंबर 11। कल का तसव्वुर, सफ़ा नंबर 12। हमारी मुसलसल ज़िंदगी पर तसाहुल के असरात, सफ़ा नंबर 14। तसाहुल के असरात, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए, सफ़ा नंबर 15। ज़रा हिम्मत कीजिए, सफ़ा नंबर 17। तसाहुल के ख़तरनाक अलामात, सफ़ा नंबर 17। लम्हों की सुस्ती, सदियों की सज़ा, एक सबक आमोज वाक़िया, सफ़ा नंबर 19। मैं जाहिर ढूंढता तेरी महफ़िल में रह गया, सफ़ा नंबर 19। तसाहुल की अकसाम, सफ़ा नंबर 20। तसाहुल के शोबे, सफ़ा नंबर 21। तसाहुल, सुस्ती और काहली का जायज़ा, सफ़ा नंबर 25। तसाहुल के मामले में आपके उजरात, सफ़ा नंबर 34। तसाहुल से गुरेज की चंद सूरतें, सफ़ा नंबर 35। सुस्ती और काहली के वजूहात, सफ़ा नंबर 35। इलाज, हकायक, एहसास और मशवरे, चंद हकायक, सफ़ा नंबर 38। शख्सी अनासर जिनके बायस हम सुस्त और काहिल होते हैं, सफ़ा नंबर 39। जायज़ा लीजिए, सफ़ा नंबर 39। जायज़ा और ख़ुद एहतसाबी, सफ़ा नंबर 41। अपने आज को गुज़श्ता कल से बेहतर बनाइए, सफ़ा नंबर 47। एक्शन प्लान, सुबह शाम प्लानिंग और एहतसाब, सफ़ा नंबर 50। वाज़े मकसद और हिस्सों में तकसीम, सफ़ा नंबर 51। तवाज़ुन, तवातुर, तसलसल, सफ़ा नंबर 52। हकीकत पसंदी, सफ़ा नंबर 52। अधूरे काम और तरजीहात, सफ़ा नंबर 52। डेडलाइन, सफ़ा नंबर 53। तरजीहात, अमूर की तकसीम और तफवीज़ अमूर, सफ़ा नंबर 53। माहौल को साजगार बनाइए, सफ़ा नंबर 59। वक्फे और इंतज़ार के लम्हात, सफ़ा नंबर 60। बेहतरीन औकात और यकसुई, सफ़ा नंबर 60। फ़ुर्सत तो मरने के बाद ही मिल सकती है, सफ़ा नंबर 61। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, सफ़ा नंबर 62। मौका का इंतखाब, सफ़ा नंबर 63। सेहत का जायज़ा, सफ़ा नंबर 63। दौरे हाजिर की सराहितों को परवान चढ़ाइए, सफ़ा नंबर 63। करने के दो काम, सफ़ा नंबर 64। अपने आप को इन गैन से बचाइए, सफ़ा नंबर 64। बैलेंस शीट, सफ़ा नंबर 65। वसीयत, 65। मालियाती अमूर, सफ़ा नंबर 65। ज़कात व वरासत, सफ़ा नंबर 66। अपनी आखरत की फ़िक्र, सफ़ा नंबर 66। तकमील पर खुशी का इजहार, सफ़ा नंबर 66। इस्तग़फ़ार, सफ़ा नंबर 67। जनाजे में शिरकत, सफ़ा नंबर 67। हकूक़ नफ्स, सफ़ा नंबर 67। चंद सवालात, सफ़ा नंबर 67। अशियार बनिए, दूर अंदेश बनिए, सफ़ा नंबर 71। दुआएँ, सफ़ा नंबर 71। आखिरी सवाल, सफ़ा नंबर 72। इंतसाब, जो ये दुआ करता है, ए अल्लाह, तो हमारे ज़ाहिर को अच्छा और शाइस्ता बना दे और हमारे बातन को हमारे ज़ाहिर से अच्छा बना दे, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है, खुदा उस पर रहम करे जिसने सुखने हकीमाना को सुना और उसे माना। जब राह रास्त की तरफ बुलाया गया तो उससे करीब हो गया, बदे राह मार्फत का दामन थामा और निजात पा गया। जिसने दस्तूर आते परवरदिगार की निगहदारी की और अपने गुनाहों से डरता रहा, जिसने अपने अमल खालस को मरने से पहले हजूर खुदावंदी में भेज दिया, जिसने अपने किरदार को नेक और शायस्ता रखा, जिसने नेक काम किए और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को हासिल किया जो आखिरत में ज़खीरा बन सकें, और उन चीज़ों से दूर रहा जिनसे उजर वाजिब है, जिनसे जिसने अगराज़ दुनिया को पमाल किया और अगराज़ दुनिया के इवज़ मताए आखिरत हासिल की, जो ख्वाहिशों पर गालिब आया और उसकी तमन्नाओं को दरोग समझा, जिसने शकीबाई को अपनी निजात व दस्तगारी का मरकब करार दिया और तकवा व परहेजगारी को तोशा मरग बना लिया, राह रोशन पर कदम रखा और शाह राह दरखशां से दूर ना हुआ, जिसने ज़िंदगी की चंद रोज़ मोहलत को गनीमत शुमार किया और फुर्सत अमल को हाथ से न जाने दिया, फिर मौत की तरफ अमल का तोशा लेकर बढ़ा। ए राहो फरजाना, रास्ते में अगर तेरे गुलशन है तो शबनम हो, सहरा है तो तूफ़ान हो, समा की मोहब्बत में मुजमिर है तें आसानी, मकसद है अगर मंजिल गारते गिरे सामान हो। जब हम एक सेब काटते हैं तो हमें चंद बीज नज़र आते हैं, लेकिन जब हम बीजों को बोते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने सेब निकलते हैं। बीजों का अपना रंग होता है और सेब, बल्कि हर सेब मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ शक्ल का। ये किताब सेबों के लिए भी है और बीजों के लिए भी, यानी सेबों के बीजों के लिए और बीजों के सेबों के लिए। तारुफ, तज़िया, उजरात और वजूहात, तस्वीर ठीक कर लीजिए, एक सबक आमोज़ तमसील। एक शख्स मुताले में मसरूफ था, पास ही उसका बच्चा खेल रहा था। बच्चे ने जब गुल मचाना शुरू किया तो उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, देखो बेटा हम पढ़ रहे हैं, शोर ना करो। बच्चा खामोश हो गया लेकिन ज़्यादा देर सबत ना कर सका। फिर जब उधम मचाने लगा तो बाप को एक तरकीब सूझी। उसने मेज़ पुराने से एक अखबार का वर्क उठाया जिस पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। बाप ने बेटे को सामने बिठा कर अखबार बीच में रखा और बेटे को बताया कि यह दुनिया का नक्शा है और इसमें पाकिस्तान है, यहाँ सऊदी अरब, यहाँ अमरीका, यहाँ बहरुल कहल और यहाँ हमालिया है। बेटा देखता रहा और जी अबू जी कहता रहा। फिर बाप ने वो वर्क उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बच्चे के हवाले कर दिया और कहा, लो बेटा इसे बराबर वाले कमरे में ले जाओ और नक्शे के फिर से जोड़ लाओ। जब बच्चा चला गया तो बाप ने इत्मीनान का सांस लिया और दिल में कहा, 3-4 घंटों के लिए दर्द सर ख़त्म हुआ। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब बच्चा आधे घंटे या 45 मिनट के बाद दौड़ता हुआ आया और बड़े फ़ख्र से कहने लगा, अब्बू अब्बू दुनिया का नक्शा ठीक हो गया, अब्बू अब्बू दुनिया का नक्शा बन गया। बाप ने दूर से नक्शे पर निगाह डाली, पहाड़ों के सिलसिले, दरियाओं की गुजरगाहें, शहर के महल्ले वकू सब अपने अपने मुकामात पर दुरुस्त पाए। पूछा, बेटा तुमने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया? बेटे ने जवाब दिया, अब्बू ये काम बड़ा आसान था। बाप की जस्तजू और बढ़ गई। बेटे ने कहा, अब्बू जब आप नक्शे के टुकड़े करने के लिए इसे उठाया तो मैंने देखा कि इस नक्शे की दूसरी तरफ इतनी ही बड़ी इंसान की तस्वीर बनी हुई थी, बस मैंने उस तस्वीर को जोड़ दिया, दुनिया का नक्शा अपने आप से ठीक हो गया। हकीकत यह है कि इंसान जहाँ कहीं भी हो और जिस किस्म की भी इसलाह चाहता हो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी इसलाह करे और अपनी ज़ात की तंजीम की तरफ तवज्जो दे। हमारे घरों का, हमारे दफ्तरों का, हमारे मोहल्लों का और इलाकों का, हमारे माशरे का और ज़िंदगी के जिन जिन मामलों से हमारा तल्लुक है वहाँ का नक्शा बिगड़ा हुआ है। उस नक्शे की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि हम इंसान की तस्वीर को ठीक करें। यह इंसान की तस्वीर दर हकीकत हमारी अपनी तस्वीर है, ये बिखरी हुई है, इसे जोड़ना ज़रूरी है। हम अपने माहौल की इसलाह और हालात की दुरुस्ती को कोशिश करते हैं ताकि नक्शा ठीक हो जाए, लेकिन हम कामयाब नहीं होते। गहराई में जाते हैं तो मालूम होता है कि तस्वीर बिखरी हुई है। तस्वीर इसलिए बिखरी हुई है कि हमारी ज़िंदगी का कोई नसबुल ऐन नहीं है। ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी से हासिल करने के लिए कोई मकासद मुतय्यन नहीं है। हमारे इरादे और इज़ाम कमज़ोर हो चुके हैं, हमारी तबीयत में सुस्ती और काहली आ गई है, हमारे मामलात में तसाहुल पैदा हो गया है। हम आज के काम को कल पर टालते हैं, फिर कभी का शिकार हैं। फ़ैसलों में इतनी तख़ीर होती है कि बस निकल जाती है, ट्रेन छूट जाती है और फ़्लाइट बंद हो जाती है। हम इतने डरपोक हो गए हैं कि किस्मत कामयाबी के दरवाजे पर दस्तक देती है और हम इसे खोलते तक नहीं। दर हकीकत हमारी ज़िंदगी में सुस्ती और काहली आ गई है और हमने कल पर भरोसा किया हुआ है। हमने ये सोच लिया कि नसबुल ऐन और मकासद का तयन भी कल करेंगे और बाकी सब काम भी वक्त आने पर खुद ब खुद हो जाएंगे। सफ़ा नंबर 11, सुस्ती काहली एक दुश्मन। ये तसाहुल, सुस्त रवि, टालमटोल, ताखीर और फिर कभी हमारे दुश्मन और हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई तबाहकुन है। ये नशा आवर चीज़ों से ज़्यादा नुकसानदेह हैं। जो शख्स नशा करता है वो माशरे से काफ़ी हद तक कट जाता है, मगर तसाहुल और सुस्त रवि का शिकार फ़र्द माशरे में शामिल रहकर माशरे को नुकसान पहुँचाता है। हमारे दफातर हों, कारोबार हों या घरेलू ज़िंदगी, हर जगह इस तसाहुल वाले मिजाज ने मसाइल पैदा किए हुए हैं। इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जूज़ी ने अपनी किताब मिनहाजुल कासिदीन में तौबा के बाब में तसवीफ़ आइंदा कर लूँगा के बारे में लिखा है, आइंदा पर टालने वाले बिलअमूम हलाक होते हैं क्योंकि वो एक ही जैसी दो चीज़ों में फ़र्क कर जाते हैं। आइंदा पर टालने वाले की मिसाल उस आदमी की सी है जिसे एक दरख्त उखाड़ना हो, वो देखे कि दरख्त बहुत मजबूत है, शदीद मशक्क़त से उखड़ेगा तो वो कहे कि मैं इसको उखाड़ने के लिए 1 साल के बाद आऊँगा। वो ये नहीं जानता कि दरख्त जितनी मुद्दत बाकी रहेगा मजबूत होता जाएगा और ख़ुद उसकी जितनी उम्र गुजरती जाएगी वो कमज़ोर होता जाएगा। जब वो ताकतवर होने के बावजूद दरख्त को कमज़ोरी की हालत में उसे नहीं उखाड़ सकता तो जब वो कमज़ोर हो जाएगा तो वह दरख्त ज़्यादा ताकतवर तो फिर वो उस पर कैसे गालिब आ सकेगा। तसाहुल क्या है? मिजाज और रवैये के बायस हम चीज़ों को गैर अहम अमूर के मुकाबले में मुअख्खर करने के अमल को तसाहुल या टालमटोल कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हम बाज़ अहम कामों को इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें करने का मूड नहीं होता, बाज़ औक़ात इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें करने के लिए मुनासिब वक़्त और सुकून मैसर नहीं होता, और बाज़ औक़ात इसलिए छोड़ देते हैं कि करने के लिए अभी काफ़ी वक़्त और उम्र बाकी है। हम अल्लाह की नेमत वक़्त को रायगां करते रहते हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो ही आने वाले दिन की पो फूटती है तो वो आवाज़ लगाता है, ए आदम की औलाद, मैं अल्लाह की नई तख्लीक हूँ और तुम्हारे आमाल का गवाह, इसलिए मुझसे जितना ज़्यादा ज़्यादे राह ले सकते हो ले लो, मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। एक और हदीस में आया है कि मोमन को दो धड़के लगे रहते हैं, एक उसका माजी जिसके बारे में वो नहीं जानता कि अल्लाह उसके क्या नताज ज़ाहिर करेगा, اور دوسرا اس کا مستقبل جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی جان کی خاطر اپنی جان کو، آخرت کی خاطر دنیا کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لانا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ٹال مٹول شیطان کا شعار ہے جس کو وہ مسلمانوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ عمر کے سانسوں میں سے ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کل کا تصور، ہماری زندگی میں کل آنے والا دن یا زمانہ قابل افس ایک دھوکہ ہے جو انسان کو وقت ضائع کرنے، شرم اور افسوس سے بچاتا رہتا ہے۔ انسان کی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کل کے لفظ کی طرح اتنے گناہوں، اتنی حماقتوں، اپنے وعدہ خلافیوں، اتنی بے جا امیدوں، اتنی غفلتوں، اتنی بے پرواہیوں اور اتنی برباد ہونے والی زندگیوں کے لیے جواب دہ ہو، کیونکہ اس کی آنے والی کل یعنی فردا کبھی نہیں آتی۔ وقت ایک دفعہ گزر گیا، مر گیا تو اس کو پڑا رہنے دو، اب اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ اس کی قبر پر آنسو بہاؤ، آج کی طرف لوٹاؤ، مگر لوگ اس کی طرف نہیں لوٹتے اور عملاً فردن آنے والا کل کو کبھی امروز آج کا دن نہیں ہونے دیتے۔ داناؤں کے رجسٹروں میں کل کا لفظ کہیں نہیں ملتا، البتہ بیوقوفوں کی جنتریوں میں یہ بکثرت مل سکتا ہے۔ یہ تو محض بچوں کا بہلاوا ہے کہ فلاں کھلونا تم کو کل دے دیا جائے گا۔ کل کا لفظ تو ایسے لوگوں کے لیے جو صبح سے شام تک خالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور شام سے صبح تک خواب دیکھتے رہتے ہیں، کامیابی کی شاہراہ پر بے شمار اپاہج سکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام عمر کل کا تعاقب کرتے ہوئے ضائع کر دی ہے اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود لی ہے، ہم اسی دھوکے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں۔ کل ہمارے لیے اچھی اچھی نعمتیں اور فائدہ مند اشیاء لائے گا، مگر وہ تو آتا ہی نہیں۔ اس طرح ایک اور رویہ پھر کبھی کا ہے، جو کام مکمل ہو سکتا ہے وہ آج کیوں کریں، اور آنے والا کل خود کام کے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ یہ رویہ یقیناً ہم لوگوں کے لیے بحثیت فرد، بحثیت قوم، بحثیت امت نقصان دہ ہیں۔ اہم اور ضروری نوعیت کے کام جن کی تکمیل سے ہمارا ذاتی، معاشی، معاشرتی اور قومی مفاد وابستہ ہے، ہم خواہ مخواہ ملتوی کر دیتے ہیں اور ان کی بجائے ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن کی بہت ضرورت نہیں ہوتی، بس ہم اس لیے دوسرے کام کرنے لگتے ہیں۔ اس میں لذت ملتی ہے، طبیعت کے تساہل کو عذر فراہم کیا جاتا ہے اور اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے۔ ٹال مٹول کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب کام کا وقت آئے گا اس وقت دیکھ لیں گے، آج اس معاملے میں پریشان ہو کر اپنے دن کو کیوں خراب کریں، جب دباؤ آئے گا تو سب کام ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آخری لمحے میں کام کریں، اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے، جیسے عید کی رات کو خریداری، انکم ٹیکس کی ادائیگی کی آخری تاریخ کو گوشوارہ بنانا، بجلی، گیس، ٹیلی فون کا بل آخری تاریخ کو جمع کرنا وغیرہ۔ شاید اس اندازے سے وہ خود تکلیف اٹھا کر اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر مزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی کی ترجیحات ہی واضح نہیں ہوتی، جب منزل متعین نہ ہو تو سفر کیسے طے ہوگا۔ امام ابن جوزی کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر سفرہ کی زیادتی کا مریض سکنجبین پینے کے بجائے سکنجبین بنانے کی ترکیب سیکھنے میں عمر برداد کر دے تو وہ یقیناً دھوکے میں مبتلا ہے۔ آگے فرمایا، خوش قسمت وہ ہے جو اپنی اہم ضرورت کو حاصل کرے، دوسری کو چھوڑ دے، عمل کی طرف توجہ کرے اور اسی کو مقصود اصل جانے، یعنی آج کی زبان میں ترجیحات کا تعین کرے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ ہماری مسلسل زندگی پر تساہل کے اثرات۔ تساہل ایک غیر محسوس بیماری اور خود ملامتی سے بھرپور نشہ ہے، اس سے انسان لذت لیتا ہے، یہ انفرادی مرض بھی ہے، معاشرتی بھی اور قومی بھی۔ اس کے اثرات بھی سخت ہیں۔ ذیل میں اس کی موضوع کے دو ماہرین جین بی برکا اور لینورا ایم یو این کی کتاب سے ان اثرات کی فہرست دی جا رہی ہے۔ ممکنہ خرابی اثرات: اعتماد اور عزت میں کمی، دوستوں اور اہل خاندان کے ساتھ تنازعات، ساتھیوں اور اہم اثر افراد سے اختلاف و ناراضی، افسر بالا سے اختلاف و ناراضی، ملازمت کا نقصان یا بے دخلی، سرکاری جرمانے، مالیاتی نقصان، حادثات یا جسمانی تکلیف۔ ممکنہ داخلی اثرات: احساس کمتری، شرمندگی اور پشیمانی، یکسوئی کا نہ ہونا، سرم گرمیوں میں شریک نہ ہونا، خود ملامتی، اضطراب، گھٹن، جسمانی تکلیف یا بیماری، تنہائی پسندی۔ تساہل کے اثرات اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ آپ سستی، کاہلی، ٹال مٹول کا شکار ہیں۔ اگر ہیں اور اندیشہ ہے کہ کسی انداز سے آپ اس مسئلے سے دوچار ہوں گے، تو پھر اپنی ذات کے مفاد میں جائزہ لیں۔ اس وجہ سے آپ کے داخلی اور خارجی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس جائزے کے لیے اگلے صفحے پر دیے گئے چارٹ سے مدد لیجئے۔ صفحہ نمبر 17، ذرا ہمت کیجئے۔ ہم تساہل کی اس بیماری کے باعث اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، نہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور نہ دنیا بناتے ہیں۔ زندگی میں ناکامی زنجیروں کی طرح پیروں کو جکڑ لیتی ہے اور حسرت اور ملامتیں مستقبل کا سامان بن جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سوتے کو جگانا آسان اور جاگتے کو جگانا مشکل ہے۔ ہم اور آپ جاگ رہے ہیں مگر بستر سے اٹھ نہیں رہے۔ ہمیں جاگنا ہے اور مقصد حیات کے حصول کے لیے کام کرنا ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ایک تو یہ کہ رات کو نیند کب آئی، دوسرے کسی قوم کا زوال کب شروع ہوا۔ یہ اس قوم کو پتہ نہیں چلتا، البتہ اس کے نقصانات آئندہ نسلوں کو پہنچتے ہیں۔ ہمارے زوال اور انحطاط کی بہت بڑی وجہ یہ تساہل اور کاہلی ہے، نا اہلی ہے، عدم توجیہ ہے اور مقصد کے شعور کی کمی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر کے معاملات سے لے کر قومی معاملات تک میں الجھاؤ ہے۔ منٹوں کے کام مہینوں میں بھی نہیں ہوتے اور ہم خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اپنی ذات کا جائزہ لیجئے، پھر اپنے گھر کا، اپنے ادارے کا، معاشرے، بلدیاتی، صوبائی اور وفاقی حکومت کا۔ ہر سطح پر ہمیں اور آپ کو تساہل اور سست روی کا سامنا ہے۔ یہ قومی بیماری زوال کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بیماری اور نشہ ہیروئن اور افیون سے کچھ کم نہیں ہے۔ سونامی کا طوفان تو سمندر کے اندر سے اٹھ کر ساحلی علاقوں کو تباہ کرتا ہے، لیکن یہ سستی اور کاہلی کا سیلاب اور طوفان کسی دریا اور سمندر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قوموں کے اندر ابھرتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ تساہل کی خطرناک علامات، یہ وہ خطرناک علامات ہیں جو چہرے کی مانند آپ کے کام اور رویے سے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں۔ اگر آپ تساہل کا شکار ہیں، آپ کی شخصیت غیر منظم اور غیر مربوط ہو جاتی ہے، اور اس کی واضح علامات یہ ہوتی ہیں۔ آپ اہم، فوری اور ترجیحات کے معاملے میں تفریق نہیں کر سکتے۔ بہت سے کام ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اپنا وقت اور توانائی آپ آرام دہ اور آسان کاموں میں لگاتے ہیں۔ جو لوگ تساہل کا شکار ہیں وہ عدم توجہ اور یکسوئی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تساہل کے شکار لوگ بہت سارے معاملات اپنی یادداشت پر چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں یادداشت کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں کاموں اور ذمہ داریوں کو بھولنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ زندگی میں کاموں کی اور ذمہ داریوں کی فہرست طویل تر ہو جاتی ہے، جس پر عمل درآمد بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ ایسے میں کام کا بڑھتا ہوا دباؤ بے اختیاری اور بے بسی کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ وقت اور اس کے استعمال کے معاملے میں غیر حقیقت پسند ہونا، اپنے معاملات اور منصوبوں کے حوالے سے غیر واضح ہونا، اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہ کرنا، تاخیر سے آنے، دفتر میں دیر تک بیٹھے رہنا، گھر پر کام لے جانا اور پھر کچھ نہ کرنا، گھر والوں کے ساتھ منصوبے بنانا اور پھر تھک جانا یا سو جانا، یا طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا لینا، زندگی کے مقاصد اور اقدار کے معاملے میں واضح سوچ نہ رکھنا، اس معاملے میں غیر ذمہ دار ہونا، اپنے آپ کو ہمیشہ مضطرب محسوس کرنا، ڈپریشن میں مبتلا ہونا، پریشان ہونا، خود ملامتی کا شکار ہونا، فیصلہ نہ کرنا اور غلطیوں کا خوف کرنا اور اس خوف کے باعث آگے نہ بڑھنا، اپنی عزت و نفس کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہونا اور دوسروں کو موقع دینا کہ وہ آپ کو نصیحت کرتے رہیں۔ اکملیت پسندی کی خواہش آپ کو کوئی نام نہیں کرنے دیتی، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے۔ نتیجہ دن کاہل اور سست شخص معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ خطرناک علامات ہیں جو آپ کی ملازمت، کاروبار اور گھریلو زندگی میں آپ کی بقا، سکون اور ترقی میں حائل ہیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کیجئے، انہیں کم کرنے کی کوشش کیجئے یا پھر ان کا علاج کریں۔ آپ کی بقا، ترقی اور کامیابی کے لیے اس بیماری کا علاج ضروری ہے۔ اگر آپ نے علاج نہ کیا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جب کشتی ثبت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے؟ تساہل کی اقسام، بعض ماہرین نے تساہل کی تین اقسام کی نشاندہی کی ہے۔ اپنی ذات کی بھلائی، ترقی اور کامیابی کے معاملے میں تساہل۔ نمبر 2، اپنی زندگی، معیشت، گھر، کاروبار اور سماج کے معاملات سے متعلق عام کاموں اور تساہل اور کاہلی والا رویہ۔ نمبر 3، دوسروں کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ۔ نمبر 1، اپنی ذات، کچھ لوگ باصلاحیت اور ہنر مند ہوتے ہیں مگر اپنی زندگی کا نصب العین اور مقاصد کا تعین نہیں کرتے۔ کھلی آنکھوں سے کامیابی کا خواب دیکھتے ہیں اور تصورات میں ہی لطف لیتے رہتے ہیں، مگر عمل کی دنیا میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ये बीमारी उनके लिए और उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए बहुत सी मुश्किल पैदा कर देती है। नंबर टू, ज़िंदगी के मामलात, घर के कामकाज, मुआवनत, दफ्तर के अमूर, फाइलें वगैरह, समाज के तकाजे और शिरकत के मामले में हम सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। ये चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ आपके लिए बोझ और मुश्किल बन जाती हैं। इस आदत के बायस घरेलू, दफ्तरी और कारोबारी झगड़े पैदा हुए हैं। नंबर थ्री, दूसरों के मामले में जिम्मेदारी, आप अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ दूसरों के मामले में गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हैं। वादा खिलाफी, वक्त पर ना पहुँचना, उधार लेकर मुकर्रर वक्त पर वापस ना करना, ये चीज़ें आपकी शख्सियत के तसव्वुर और वक़ार को नुकसान पहुँचाएंगी। तसाहुल के शोबे, ज़िंदगी से सुस्ती और काहली को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये तशखीस करें कि यह मर्ज़ किन किन सूरतों में हमारे मामूलात में दाखिल है। माहरीन ने तहसील तसाहुल की कैफियात और रवैयों को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया है जो दर्ज ज़ैल हैं। ये फहरिस्त आपको अपनी ज़ात का जायज़ा लेने का मौका देगी, आप किन मामलात में तसाहुल का शिकार हैं और किन मामलात में मुस्ताद। घरेलू अमूर, छोटे छोटे कामकाज और मरम्मत के काम, मजदूर और मिस्त्री को बुलाना, ख़राब और गैर ज़रूरी सामान की वापसी, घर के बड़े काम, घर की देखभाल और मरम्मत, गाड़ी की देखभाल और मरम्मत, घरेलू ज़रूरियात और सहूलियात के बिलों की अदायगी, साजो सामान की खरीद, बीवी बच्चों के ज़रूरी कामकाज, दफ्तरी अमूर, दफ्तर वक्त पर पहुँचना, मीटिंग के लिए वक्त की पाबंदी से पहुँचना, कारोबारी फ़ोन बाकायदगी से करना, फैसले करना, कागजी अमूर बेहतर तरीके से निपटाना, रिपोर्ट्स वगैरह तहरीर करना, अफराद के मसाइल पर गुफ्तगू करना, अच्छी कारकर्दगी पर अफराद की हौसला अफजाई करना, तख्लीकी ख्यालात और तजावीज़ को काबिल अमल बनाना, ग्राहकों को अपनी खिदमात और तजारत के बिल भेजना, अपने लिए तनख्वाह में इजाफे और तरक्की के लिए बात करना, अपने अफसर के साथ मुतलका मामलात पर गुफ्तगू के लिए मीटिंग करना। ज़ाती अमूर, जिस्मानी वर्जिश करना, वज़न कम करने के तरीके अपनाना, सिगरेट या नशा आवर चीज़ों को तर्क करना, तिबी मशवरे के लिए डॉक्टर से रजू करना, हिफाजान सेहत के असूलों पर अमल करना, बाल बनाना, ज़ाती दिलचस्पी के हवाले से मुतालिया करना, मशागल और दिलचस्पी के अमूर को अंजाम देने की कोशिश करना, ज़ाती दिलचस्पी के मामले में मुख्तलिफ कोर्सेज में शिरकत करना, समाजी तलुकात, दोस्तों से मुलाकात करना या फ़ोन करना, खतो खताबत करना, अफराद को मदऊ करना, रिश्तेदारों के हाँ मुलाकात की गरज से जाना, रिश्तेदारों से खतो खताबत या फ़ोन पर राबता, मुख्तलिफ अमूर में हदिया तबर्रक पेश करना, तोहफे और कार्ड्स वगैरह भेजना, समाजी और माशरती अमूर के लिए वक्त पर पहुँचना, मदद और इस्तानत के लिए दरख्वास्त करना, अफराद को ये बताना कि आप गुस्से में हैं या नाराज़ हैं, गैर मुफीद तलुकात को ख़त्म करना। मालियाती अमूर, इनकम टैक्स के गोशवारे भरना, आमदनी और खर्च का मुनासब हिसाब रखना, अपने मसाइल का बजट बनाना, बचत की सरमायाकारी करना, बैंक से गोशवारे या दीगर मुतलका अमूर के सिलसिले में राबता करना, मुख्तलिफ किस्म के बिलों की अदायगी, मुख्तलिफ अदारों के कर्जों की वापसी, ज़ाती कर्जों की वापसी, मुख्तलिफ कर्जदारों से रकम जमा करना या याद दहानी करवाना, रेडियो टीवी के लाइसेंस फीस, गाड़ी टैक्स और मुतलका वाजबात अदा करना, अपनी चेकबुक का जायज़ा लेना, दीगर अमूर। इनके अलावा भी चंद अमूर ऐसे हैं जिनकी हमारे मुआशरे के तनाजर में बड़ी अहमियत हमल है। मामलात में अगर गलती या ज़्यादती हो जाए तो माफ़ी मांग लेना, रिश्तेदारों के साथ मुख्तलिफ तनाज़ात को निपटाना, दोस्तों और अहबाब से उधार हासिल की गई चीज़ों को वापस करना, हकूकुल्ला के मामले में कोताहियों के सिलसिले में माफ़ी और तवज्जो, अफराद से ताज़ियत करना, मरहूमीन के लिए दुआ मग़फ़रत करना, अपने मामलात की सहूलत के लिए दुआ करना, इयादत के लिए जाना, अहबाब से किए गए वादों को ईफा करना, किसी फ़र्द की मौत के बाद वसीयत और विरासत के मामलात को निपटाना। तसाहुल की चंद मजीद सूरतें, हमारी अमूमी ज़िंदगी में तसाहुल मजीद चंद सूरतों में मौजूद होता है, जैसे हमारे अमूमी काम अहम कामों के आगे जाते हैं और हम तरजीहात के मामले में अपनी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखते। कौमी डिसिप्लिन की कमी का बायस इंतहाई अहम कामों से फरार के लिए हमें हज़ारों बहाने मिल जाते हैं। हम अपने फरार और का नाकामी का बोझ खारजी वजूहात पर डालते हैं। हम ज़िंदगी के अपने मुकर्रर करदा अहदाफ तक अपनी इसी किस्म की कोताहियों के बायस नहीं पहुंच सकते, नतीजतन जहनी दबाव का शिकार होते हैं जिससे इस्तेदाद की कार मुतासर होती है। चूँकि हमारी कौमी ज़िंदगी में बुनियादी फ़लसफ़े, तसव्वुर, हयात, पॉलिसी, मुतलका मनसूबाबंदी और अफराद कार के बेहतर इस्तेमाल की सलाहियत की कमी है, लिहाजा कौमी मिजाज हंगामी और एडहाक अज़म का शिकार हो गया है। हुकूमतें और अदारे अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इज्तमाई कौमी नुकसान को नज़रअंदाज करके अहम इकदाम कर लेते हैं जो उनको वजूद को तो फौरी तौर पर कायम रखते हैं, मगर बहसीयत कौम हम अपनी बुनियादों को तबाह करते हैं। हमारा मिजाज ये है कि जिस काम के लिए कोई आखिरी तारीख होती है हम उस आखिरी तारीख को ही करते हैं। इससे पहले कई मौके ऐसे आते हैं जिनमें हम इस काम को ना सिर्फ करने की मनसूबाबंदी बल्कि असल कार्रवाई भी हो सकती है। हमारा मिजाज इस बात से भी जाहिर होता है कि मौसम बरसात में जब पानी जमा होता है तो हम पत्थर रखकर रास्ता बनाते हैं। हालांकि इस मामले में इनफरादी और बल्दियाती कोशिशें पहले भी हो सकती हैं, पानी की निकासी के जराए की सफाई हो सकती है। इम्तिहान के दिनों में वक्फा करने के लिए चंद घंटे तक फिल्में देख ली जाती हैं या दोस्तों की महफिल में बैठ जाते हैं। यह वक्त चाहे चंद मिनट का ही क्यों ना हो बहुत कीमती है। हम अखबार पढ़ने लगते हैं, नावल पढ़कर वक्त गुजारा कर लेते हैं। इतवार के दिन घर के लिए सौदा सर्फ की जरूरत होती है मगर अखबार को सौदा सर्फ पर तरजीह देते हैं। नतीजतन घर के लिए बची खुची चीज़ें आती हैं। हालांकि अखबार तो सौदा सर्फ के बाद भी पढ़े जा सकते हैं। टेलीविजन के चैनल घुमाते रहते हैं और इंटरनेट पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर गैर जरूरी विजिट करते हैं। बज़ाहिर अपनी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर हकीकत में अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। तसाहुल, सुस्ती और काहली का जायज़ा। आप तसाहुल का जायज़ा चार तरीक़ों से ले सकते हैं। इसकी मिसाल यूं ली जाती है कि बीमारी की सूरत में आप इलाज करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर आपके कई किस्म के टेस्ट करवाता है। हर टेस्ट की शक्ल अलग होती है। इन लेबॉरेटरी जायज़ों के नतज की रोशनी में डॉक्टर बीमारी के बारे में कोई फ़ैसला करता है, फिर वो एक नतीजा पर पहुँचता है जिसे तशखीस कहते हैं। तसाहुल की तशखीस के लिए हमने अफराद के नुक़ नज़र से जायज़ा लिया, फिर शोबा जात के नुक़ नज़र से दवा और तजिए हैं उन्हें भी आजमाइए। औकात का जायज़ा, यानी आप कम अज़ कम एक हफ़्ते तक इस बात का जायज़ा लें कि आप किन औकात में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं। इस सिलसिले में चार्ट का मुताला करें और उसे एक हफ़्ते तक पुर करने की कोशिश करें, फिर ख़ुद तजिया करें या अपने किसी बुज़ुर्ग से मशवरा करें। काम अमूर का जायज़ा, बाज़ काम अमूर ऐसे होते हैं जिन्हें करने का दिल ही नहीं चाहता या आप में इस काम करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। अगर है तो किसी न किसी खौफ की वजह से आप नहीं कर पाते। जाती और शोबा जाती तसाहुल, आपने तसाहुल की शोबा जाती सूरतों का मुताला किया। अब सामने दिए गए चार्ट की मदद से अपने आप तसाहुल का तजिया कर सकते हैं। सुस्ती, काहली, टालमटोल और तन आसानी की सूरतों को बड़े कालम में लिखिए। दाएं तरफ के कालमों 1, 2, 3 में आप अकसाम लिखेंगे और बाएं तरफ के कालमों ABCDEF में शोबे तहरीर करेंगे।